माधव जय कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धरी गिरिवर राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी जय जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा नित गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा विष्णु पाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमदिस डिवाइन ग्रेस अभयचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण ललिता विशाख गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 18। अध्याय का नाम है अध्याय का नाम है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। श्लोक संख्या है 27। देखा ना, विप्रकीर्ण जटाच्छन्नं जिनेन च विशुष्यन्तालुरुदकं तथा भूतम् अयाजत विप्रकीर्ण जटाच्छन्नं रौरवेणाजनेन च विशुष्यन्तालुरुदकं तथा भूतम् अयाचत विप्रकीर्ण जटाच्छन्नं रौरवेणाजनेन च विशुष्यन्तालुरुदकं तथा भूतम् अयाचत। बोलिए। और
विप्रकीर्ण जटाच्छन्नम् रौरवेण जिनेन च विशुष्यतालुरुदकम् तथा भूत मया चत।
शब्दार्थ बोलिए। विप्रकीर्ण बिखरे हुए जट आच्छन्नम लंबी लंबी जटाओं से ढके हुए रौरवेण मृगछाला से अजिनेन चर्म से च भी विशुष्यत सूखा हुआ तालु तालु उदकम जल तथा भूतम उस अवस्था में अयाचत मांगा। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। ध्यान मग्न मुनि मृग चर्म लपेटे थे और इनकी लंबी जटाएं उनके सारे शरीर पर बिखरी हुई थी। प्यास के मारे सूखे तालु वाले राजा ने उनसे जल मांगा। यहाँ तात्पर्य पढ़ने से पहले श्लोक को समझेंगे। श्लोक के शब्द क्या हैं? विप्रकीर्ण जटाच्छन्नम। विप्रकीर्ण का मतलब बिखरे हुए, बिखरे हुए जटाओं से। छन्नम, छन्नम का मतलब क्या है? ढके हुए। तो मुनि का शरीर इस तरह से ढका हुआ है। आप सोचिए कि अगर आप अपने बालों को ना काटें तो कितने बड़े बाल हो जाएंगे। तो प्राचीन काल में ये सुविधा नहीं थी, हेड शेविंग करने की सुविधा नहीं थी। अभी हेड शेविंग करने की सुविधा है और आप जो है अपने हाथ से कर सकते हैं, किसी से करा लेते हैं और उसमें समय भी खराब नहीं होता है। लेकिन प्राचीन काल में जंगल में रहने वाले जो ऋषि मुनि होते थे तो उनके पास ये सुविधा नहीं थी सिर मुंडन कराने की। तो अपना समय बचाने के लिए वे जो है जटाएं बढ़ाते थे, तो उनकी जटाएं बड़ी होती थी। और सोचिए कि बहुत लंबी उम्र के कोई ऋषि मुनि जिन्होंने अपने बालों को नहीं काटा है, तो एक पहली बात जटाएं बन जाती हैं, है ना, क्योंकि वो उलझ जाते हैं, बाल उलझ जाते हैं और जटाएं बन जाती हैं, और वो जो जटाएं होती हैं वो कभी नहीं सुलझा सकते, आप कभी नहीं सुलझा सकते, आगे चल करके तो काटना ही पड़ेगा, अगर कुछ करना है तो काटना ही पड़ेगा। तो कितने सालों से मुनि जो है आश्रम में रहते थे, तपस्या करते थे, तो उनकी जटाएं कितनी बड़ी हो गई होंगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि उन जटाओं के द्वारा वो इतनी बड़ी हो गई थी, ढक गए, पूरा शरीर ढक गया। अगर वो बैठे हैं, जटाएं जो है मतलब कहाँ तक जाएंगी, आप सोचिए, है ना। अगर मान लो 60 साल से, 80 साल से, 100 साल से, पहले तो ऐसी उम्र होती थी ना, है ना, तो इस तरह से वो जो है अगर बैठ जाएं, है ना, तो कोई देखभाल करने वाला है नहीं, बालों की देखभाल करने वाला है नहीं, है? तो उनकी जटाएं जो है मतलब ऐसी फैल जाती हैं कि उनका पूरा शरीर ढक जाता है, तो चेहरा भी पहचान में नहीं आएगा, इधर भी, आगे भी, इधर भी, या थोड़ा जटाएं अगर ऐसे कर लिए तो चेहरा दिखाई पड़ेगा, लेकिन बाकी पूरा शरीर, और जमीन में भी कितनी दूर तक वो जटाएं फैली होंगी, आप सोचिए। तो ये कौन से मुनि हैं जिनको राजा परीक्षित ने देखा और पानी मांगा, कौन बताएगा? समीक मुनि, समीक मुनि थे। रौर वीणा जिन्हें ने चाह, तो एक तो जटाओं से ढका हुआ है शरीर, और दूसरा शरीर को ढकने के लिए उनके पास क्या है, रौरव, अजिन, अजिन का मतलब चर्म, और रौरव का मतलब रुरु मृग का जो चर्म है। जंगल में कोई वस्त्र नहीं मिलता, जंगल में कोई वस्त्र नहीं मिलता, तो मृग कोई शरीर छोड़ दे तो उसके जो चर्म, उसका जो चर्म है तो उसी से ही शरीर को ढकते हैं। तो उन्होंने अपने मृग चर्म को धारण किया हुआ है, एक तो जटाओं से शरीर ढका हुआ है, और दूसरा रुरु मृग के चर्म से उन्होंने अपने शरीर को ढका हुआ है, धारण किए हैं, कमर में धारण किए हैं। रौरवीणा जिने ने चाह, आच्छन्नम, ये दोनों से आच्छन्नम ढके हुए हैं, एक तो जो फैली हुई जटाएं हैं उनसे उनका शरीर ढका हुआ है, और दूसरा शरीर उनका ढका हुआ है रुरु मृग के चर्म से। विशुष्ट तालु ये परीक्षित महाराज के लिए है, परीक्षित महाराज का तालु बिल्कुल वी मतलब विशेष रूप से सूख गया है, क्योंकि वे जब अपने महल से चले थे सवेरे तो पानी की कोई व्यवस्था उनके पास थी नहीं, और जंगल में जाएं तो जंगल में पानी कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, कुछ पता ही नहीं, तो बहुत थक गए थे और प्यासे थे, और पानी खोज रहे थे, कहीं पानी नहीं मिल रहा था, जंगल में पानी कहीं मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, और कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, कुछ पता नहीं, तो उनको पानी नहीं मिला। तो पानी, उदकम माने पानी, तथा भूतम अयाचत, इस प्रकार की अवस्था में उन्होंने मांगा पानी। तो परीक्षित महाराज ने पानी क्यों मांगा, ऐसी स्थिति में तो पानी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि कोई मुनि है ना, अगर इस तरह से ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं तो उनको जो है बाधा डालना, उनके ध्यान में बाधा डालना उचित नहीं है। और राजा बहुत शिष्टाचार को जानते थे, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी कि उन्होंने पानी मांगा। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, शिला प्रभुपाद की। प्यासे होने के कारण राजा ने मुनि से जल मांगा। तो यहाँ प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि राजा प्यासे हैं, और जब कोई व्यक्ति प्यासा होता है तो फिर वो विचार नहीं करता है दूसरे की बाधाओं पर, क्योंकि प्यास की बाधा बहुत बहुत कष्ट कारक होती है। तो प्यास इतनी ज़्यादा उनको लगी थी कि उन्होंने विचार नहीं किया कि मुनि ऐसी स्थिति में बैठे हुए हैं, और कोई था नहीं आश्रम में, और कोई था नहीं, तो मुनि से ही उन्होंने पानी मांगा। तो ये प्रभुपाद ये समझाना चाहते हैं कि ये ऐसी स्थितियां बन गई कि परीक्षित महाराज को साप मिले, क्योंकि उनको सांप मिलना था और ये निश्चित था कि सांप मिलना है। तो ये स्थिति ऐसी बन गई जहाँ राजा परीक्षित के लिए भी आवश्यक हो गया कि वे उनकी समाधि में बाधा डालें और पानी मांगें। और परीक्षित महाराज की कोई गलती नहीं, ऐसी स्थिति में अगर राजा पानी मांगे तो उसका कोई दोष नहीं माना जाता। तो ये स्थितियां इस तरह की बन गई, राजा को कोई दोष नहीं लग रहा है कि वो पानी ऐसी स्थिति में मांग रहे हैं। नहीं तो ऐसी स्थिति में किसी भी ऋषि मुनि को जो है बाधा डालना उचित नहीं होता, लेकिन राजा है और राजा की स्थिति ये होती है कि उनको पानी अगर चाहिए और पानी अगर नहीं मिला और थोड़ा सा भी विलंब हुआ तो वो दंड दे सकता है। महल में राजा जो है दंड दे सकता है अपने सेवक को अगर थोड़ा भी विलंब हो। और यहाँ तो राजा को बहुत देर हो गई है प्यासे और उनका जो है तालू भी सूखा है, सूख रहा है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि प्यासे होने के कारण राजा ने मुनि से जल मांगा। ऐसे महान भक्त राजा ने समाधि में लीन मुनि से जल मांगा। तो प्रभुपाद कहे महान भक्त, जो महान भक्त होता है वो उतना ही ज्यादा शिष्ट होता है, शिष्टाचार का पालन करता है। महान भक्त जो है जो होता है सर्वभूतस्थमात्मानम, तो अपनी तरह हर व्यक्ति को देखता है, तो किसी को भी वो कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, किसी के कार्य में बाधा नहीं डालना चाहता। तो राजा इतने ऊंचे भक्त थे तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि ऐसे महान भक्त राजा ने समाधि में लीन मुनि से जल मांगा। समाधि में लीन मुनि हो ना तो बहुत अनुचित है उनकी समाधि को तोड़ना। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है ध्यान की विधि है एकांत स्थान में, पवित्र स्थान में, सुचोदय से प्रतिष्ठाप स्थिरम आसनम आत्मनहा, पवित्र स्थान में एकाकी एकाकी यदि चित्तात्मा, और बिल्कुल एकांत में अपने चित्त को और मन को जीत करके निराशीर परिग्रह। तो इस तरह से ध्यान की विधि है। तो ऐसे में शिष्टाचार यही था कि राजा उस तरफ जाते ही नहीं और बिल्कुल जरा सी भी आहट भी पैदा नहीं करना चाहिए कि ध्यान टूट सकता है। तो राजा तो बिल्कुल दबे पांव वहां से, अगर आवश्यकता पड़े तो वहां से दबे पांव निकल जाते कि बिल्कुल जरा भी आहट ना हो, ऋषि के ध्यान में कोई बाधा ना हो। तो राजा इतने बड़े भक्त थे। तो प्रभुपाद लिखते हैं ऐसे महान भक्त राजा ने समाधि में लिए मुनि से जल मांगा। राजा और फिर मुनि है समाधि में लीन, तो राजा का बहुत बड़ा ये कर्तव्य होता है कि ऐसे समाधि में लीन मुनियों की रक्षा करें कि उनकी समाधि में बाहर से किसी प्रकार की बाधा ना पैदा हो। और जबकि राजा यहाँ खुद ही बाधा डाल रहे हैं मुनि के समाधि में, ध्यान से ज़्यादा आगे की स्थिति समाधि होती है, तो ध्यान में बाधा नहीं डालना चाहिए, फिर समाधि तो बहुत दूर की बात है। और मुनि समाधि में राजा महान भक्त हैं लेकिन तो भी डाल रहे हैं। तो एक बहुत ही एक ऐसी दुर्घटना है जो कि सामान्यतया नहीं होती। राजा जो कि प्रजा का गुरु होता है, शिक्षक होता है, और वो स्वयं आचरण करके वो जो है आदर्श स्थापित करता है, तो राजा कैसे ऐसा कर सकता है कि एकांत में कोई मुनि ध्यान कर रहे हैं और वो जाकर के बाधा डाले, बल्कि कोई बाधा डाले तो राजा उसको दंड देगा। और यहाँ पर राजा स्वयं बाधा डाल रहे हैं, जल मांग रहे हैं, है ना। तो ये एक अनहोनी घटना है जो कि कभी नहीं होती। राजा कभी भी ऐसा नहीं करता। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, निश्चय ही ये दैव कृत था, अन्यथा ऐसी अलौकिक घटना की कोई संभावना ना थी। दैव कृत, दैव कृत का मतलब है कि पहले से निश्चित हो चुका है कि ये मतलब होना है, है? और राजा को शाप मिलना है, और उस कारण से श्रीमद् भागवत की स्थापना होनी है, श्रीमद् भागवत प्रकट होना है। तो ये समय ऐसा था जो पहले से निश्चित हो चुका था, और उसके कारण जो है ऐसे बने कि राजा को भी दोष ना लगे। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस तरह महाराज परीक्षित विषम परिस्थिति में फंस गए, जिससे आगे चलकर श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हो सका। तो राजा परीक्षित को एक व्यवस्था थी उनकी कि वे जो है मतलब पानी मांगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो समझना यहाँ पर यह है कि प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि होते थे तो वे जो है जटाएं धारण करते थे, लेकिन हम लोग तो जटाएं नहीं धारण करते हैं। तो कई लोग शिकायत करते हैं कि आप लोग जो है सफाचट होते हैं हमेशा शेविंग है? तो ये जो है मतलब प्राचीन काल के जो ऋषि मुनि हैं, साधु हैं, तो वो तो जटाएं धारण करते थे, तो आप लोग क्यों नहीं करते हैं, है ना? लेकिन ऐसा कुछ शास्त्रों का आदेश नहीं है कि जटाएं धारण की जाएं। ये अपनी सुविधा है कि आप की कैसी सुविधा है कि अपना समय बिना बर्बाद किए आप जो है किस तरह से रह सकते हैं। और ये ज़्यादा अच्छा है कि अगर हेड शेव कर लिया तो इसमें सिर की सफाई भी बनी रहेगी और आपको समय नहीं लगाना पड़ेगा कि बालों की सफाई करें, इसमें कितना टाइम लगता है, बहुत समय खराब होता है। तो लेकिन अगर शेविंग की सुविधा है तो हम लोग जो है प्रभुपाद के अनुयायी हैं, युक्त वैराग्य का सिद्धांत जानते हैं, और युक्त वैराग्य के अनुसार हर चीज़ को जो है इस तरह से उपयोग करते हैं कि हम कृष्ण की सेवा में अपना समय निकाल सकें। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मंदिर में आप जो है हम घी का दिया जलाएं। पहले जो है मंदिर में दर्शन के लिए घी का दिया जलाया जाता था और सब दीवारें भी काली होती थी, है ना? तो हम कहेंगे भाई अब तो वो हमारी वही परिपाटी चल रही है, हम बिजली के बल्ब नहीं जलाएंगे और बिजली का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है। अभी चूंकि बिजली का आविष्कार हो गया है और बिजली का प्रयोग लोग इंद्रिय तृप्ति में कर रहे हैं, तो हम भगवान की सेवा में क्यों ना करें बिजली का प्रयोग। प्राचीन काल में साधु बिना सिले कपड़े पहनते थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सन्यासियों के लिए भी सिले कपड़े पहनने का आदेश दिया, ये क्रांति। तो इसमें भी जो है कुछ लोगों ने मतलब विरोध किया कि ये गलत है, साधु को जो है बिना सिले कपड़े पहनना चाहिए, है ना? अब बिना सिले कपड़े अगर पहनते हैं ठंड में कैसे रक्षा होगी और कैसे यात्रा करेंगे? और साधु को जो है कार में नहीं बैठना चाहिए, पैदल चलना चाहिए या ज़्यादा बैलगाड़ी में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सबसे पहली बार वृंदावन में कार में बैठ करके गए, तो एक बहुत बड़ा ये मतलब ये माना गया, अन्याय माना गया कि ये जो है शिष्टाचार के विरुद्ध है, और बहुत विरोध हुआ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि मैं तुम लोगों को युक्त वैराग्य सिखाने आया हूँ कि हर चीज़ को कैसे कृष्ण की सेवा में लगाया जाए। लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कार का प्रयोग कर रहे हैं और बिजली का प्रयोग कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, और हम कृष्ण की सेवा में ना करें, है ना? कि कितना बड़ा अन्याय है। तो हर चीज़ को कृष्ण की सेवा में लगाएं, युक्त वैराग्य। तो उसी प्रकार से हम अपना समय बचा लेते हैं अगर हम सिर को मुंडित करा के अपनी सफाई इसमें रख सकते हैं, तो जो है इसमें बहुत समय की बचत होती है। लेकिन प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि हैं उनके पास ये सब सुविधाएं नहीं होती थी, तो वे जो है जटाएं धारण करते थे और वे भी अपना समय बचाते थे, इसलिए उनकी जटाएं इतनी उलझ जाती थी कि उनको जो है कभी भी सुलझाया नहीं जा सकता। अभी मैं फोन बंद कर मोबाइल बंद कर रहा हूँ, आप लोगों के पास मोबाइल हो तो बंद कर दीजिए, जिनके मोबाइल हो बंद कर दीजिए। तो इस तरह से जो है सिद्धांत जो है, असली जो सिद्धांत है वो ये है, स्मर्तव्या सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचर। जितने भी विधि निषेध हैं वे सब इन दो नियमों के सेवक हैं। विधि का मतलब ये करना ये करना ये करना, बहुत सी विधि हैं, तो ये सब विधियां जो है इस विधि के सेवक हैं कि हमेशा कृष्ण का स्मरण करना है। और जितने निषेध हैं, ये नहीं करना ये नहीं करना ये नहीं करना, ये सब जो है एक निषेध के सेवक हैं कि कृष्ण को भूलना नहीं। जो डोंट है ना, सबसे बड़ा जितने भी डोंट हैं उनका जो है राजा डोंट क्या है कि कृष्ण को भूलना नहीं। और जितने डूज हैं ये करना वो करना, उन सब का राजा क्या है, एक डू है क्या है कि कृष्ण का स्मरण करना। बाकी कुछ नहीं है कि भाई आप मुंडित सिर क्यों होते हैं, आप गेरुआ कपड़े क्यों पहनते हैं, आप सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं, ये पीले कपड़े क्यों पहनते हैं, ये नहीं ये पहनना है, ये करना है ये नहीं करना, तो कुछ भी ऐसा नियम नहीं है। असली सिद्धांत यही है कि कृष्ण का स्मरण कैसे किया जाए और दूसरों को कृष्ण का स्मरण कराया जाए। तो यहाँ पर बताया गया विप्रकीर्ण जटाच्छन्नम, जटाएं उनकी इतनी बड़ी हो गई कि वे जो है जटाएं जमीन में बहुत दूर तक फैली हुई हैं और उनका शरीर इस तरह से ढक गया है। और रौरवेणा जनेन चा, कपड़ा भी नहीं है, कपड़ा वस्त्र भी नहीं मिलता, तो मृगचर्म धारण करते हैं। लेकिन ये नियम नहीं कि अब हम मृगचर्म ही धारण करेंगे, नहीं नहीं, वही पहले की जो प्रथा है हमारी, हम तो उसी अनुसार अब हम जो है मृग की छाल ही धारण करेंगे, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि ब्रह्मानंद भारती जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए जगन्नाथपुरी में, तो मृगचर्म जो है धारण करके आए, मृगचर्म या व्याघ्र चर्म जो भी हो, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनका आदर नहीं किया और वो उनके गुरु के जैसे थे, गुरु के गुरु भाई तो चैतन्य महाप्रभु ने मतलब सबने कहा कि ये ब्रह्मानंद भारती आपसे मिलने आए हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं तो नहीं देख रहा ब्रह्मानंद भारती को, ब्रह्मानंद भारती तो मृगचर्म धारण कर ही नहीं सकते तो ब्रह्मानंद भारती समझ गए कि भगवान जो है सीधे विरोध नहीं कर रहे हैं, नहीं वो कह रहे हैं कि नहीं ब्रह्मानंद भारती तो हो ही नहीं सकते। चैतन्य ब्रह्मानंद भारती समझ गए कि भगवान को जो है ये पसंद नहीं है और वे आदर नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं ब्रह्मानंद भारती को तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ, वो ऐसे हो नहीं सकते, वो मृगचर्म नहीं धारण कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वस्त्र मिल रहा है तो आप वस्त्र धारण करिए, फिर मृगचर्म धारण करने की जरूरत नहीं है कि आप वो दिखावा करें कि नहीं मैं तो मृगचर्म धारण करूँगा, मैं स्पेशल साधु, तो ऐसा नहीं है। चेहरा भी जो है दाढ़ी मूछ है तो लोग यही सोचते हैं कि भाई जितनी लंबी दाढ़ी होगी उतनी बड़ा साधु है, तो लोग जो है दाढ़ी देख करके ही साधु को पहचानते हैं, भाई कितनी बड़ी दाढ़ी है उतना बड़ा साधु है ये। तो कुछ लोग हमें देख करके भी जो है वो शिकायत करते हैं कि आप लोग बिल्कुल शेव हैं, पूरा चेहरा शेव किया हुआ है, आप लोग क्यों ऐसा साधु का मतलब है दाढ़ी मूछ है दाढ़ी मूछ रखो। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रचार के लिए जो भी जो है आवश्यक है और सफाई के लिए, तो अगर हम जो है चेहरा शेव करते हैं और सिर को शेव करते हैं तो उससे हमारी सफाई भी होती है और इसमें सुंदरता भी बढ़ती है। लोग सोचते हैं लावण्यम केश धारणम, कलयुग में लोग बड़े बड़े बाल बढ़ाएंगे और उसी को सुंदरता का चिन्ह समझेंगे, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि नहीं, हमारा तो जो है सिद्धांत यह है कि इसी से सुंदरता बढ़ती है। तो विप्रकीर्ण जटाच्छन्नम रौरवेणा जनेन चा, विशिष्ट तालुरुदगम तथा भूतम अयाचत। तो राजा परीक्षित ने ऐसी स्थिति में उनसे जल मांगा, समीक मुनि से जल मांगा, और समीक मुनि का जो ध्यान था वो सचमुच ध्यान था और वो समाधि की स्थिति में थे, इसलिए उन्होंने नहीं सुना। लेकिन राजा परीक्षित को कुछ ऐसा संदेह हुआ कि शायद ये दिखावा कर रहे हैं, मैं प्यासा हूँ लेकिन ये दिखावा कर रहे हैं और मुझे पानी ना देने के लिए इन्होंने जो है ये बहाना बनाया हुआ है कि ध्यान में डूबे हुए हैं। लेकिन सचमुच उनका ध्यान जो है, सचमुच उनका जो ध्यान था वो बिल्कुल सच्चा ध्यान था, समाधि की स्थिति में थे और उन्होंने नहीं सुना। और महाराज परीक्षित ने परीक्षा करने के लिए कि अगर झूठा ध्यान होगा तो मरा हुआ सांप उन्होंने गले में डाल दिया, तो कुछ गलत नहीं था उनका, क्योंकि राजा का ये कर्तव्य होता है कि वो परीक्षा करे असली और नकली की। और अगर नकली ध्यान होता तो मुनि उछल पड़ते, सांप को जैसे गले में डाला तो उछल पड़ते, है ना, तो उनके गले में सांप पड़ा रहा। तब राजा परीक्षित ने ये विचार किया कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मुनि के गले में सांप डालकर बहुत बड़ा अपराध कर दिया, और उनका ध्यान तो बिल्कुल सच्चा था, तो परीक्षित महाराज अपने को अपराधी समझते हैं, लेकिन समीक मुनि परीक्षित को अपराधी नहीं समझते, वो अपने को अपराधी समझते हैं कि इतने बड़े राजा आए, हमने उनको पानी नहीं दिया, हमारा कितना बड़ा अपराध हुआ। और दोनों सच्चे भक्त हैं, दोनों ही सच्चे भक्त हैं, और दोनों अपने को अपराधी समझ रहे हैं, और एक दूसरे का गुण देखते हैं। राजा परीक्षित महाराज समीक मुनि का गुण देखते हैं कि इनका जो है बिल्कुल सच्चा ध्यान था, मैंने जो है इनके ध्यान को जो है तोड़ने का प्रयास किया और मरा हुआ सर्प डाला, है ना। और समीक मुनि जो है राजा परीक्षित का गुण देखते हैं कि इतने बड़े राजा हैं, इनके राज्य में हम लोग जो तपस्या करते हैं इनको छठा अंश उसका मिलता है, इनकी सुरक्षा में ही हम लोग तपस्या कर रहे हैं, नहीं तो बहुत से असुर हैं वो बाधा डालेंगे हमारी तपस्या में, तो इन और ये राजा हमारे आश्रम में आए, हमारा तो बड़ा सौभाग्य था, इनका हम स्वागत करते और मीठे शब्दों से भी इनका स्वागत करते, इनको आसन देते, इनको पानी देते, कुछ फल मूल खिलाते, तो हमने इनका स्वागत नहीं किया। तो दोनों एक दूसरे का गुण देखते हैं और दोनों अपना अपना दोष देखते हैं, तो ये भक्तों का इस तरह का जो है स्वभाव होता है। लेकिन जो श्रृंगी था बालक समीक मुनि का पुत्र, वो नादान था और कलयुग ने उसके दिमाग में ही जो है अधिकार जमा करके और राजा को श्राप दिलवाया, तो उसने श्राप दिया, तो वो उसका जो है बहुत बड़ा अन्याय हो गया, और श्राप भी कैसा कि मृत्युदंड, अगर मान लो कुछ अगर समझते हो भाई कुछ अपराध हुआ तो उसके अनुसार कुछ दंड दिया जा सकता है, लेकिन मृत्युदंड कि राजा की मृत्यु हो जाए 7 दिन में, तो ये उसका बहुत बड़ा जो है अज्ञान था। तो इसी की चर्चा हुई है श्रीमद् भागवत में, लेकिन समीक मुनि का कोई दोष नहीं, बहुत शुद्ध भक्त हैं, राजा का भी कोई दोष नहीं है, राजा भी बिल्कुल शुद्ध भक्त हैं, कोई दोष नहीं है, जो कुछ भी किया वो उस समय और परिस्थिति के अनुसार जो उन्होंने जो कुछ किया वो बिल्कुल सही किया, कुछ भी गलत नहीं किया, दोनों निर्दोष हैं और दोनों अपने को दोषी समझ रहे हैं और दूसरे का गुण देख रहे हैं। तो इस घटना से हमें बड़ी शिक्षा मिलती है। अब मेरे ख्याल से अगर प्रसाद शुरू है तो हम लोग यहाँ समाप्त कर दें, या कुछ थोड़ा प्रश्न उत्तर कर सकते हैं आप लोग, अभी क्या स्थिति है, प्रसाद तैयार है, हैं तैयार है, एक आध प्रश्न कर सकते हैं, कुछ आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या चर्चा। हाँ जी,
जब जैसे जिसने हेयर रखा है तो उसकी मेंटालिटी कुछ और होती है, अगर जब बाल निकाल देते हैं तो जितने भी संसार की मेंटालिटी इमीडिएटली वो क्लीन हो जाता है,
ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है,
चेक करिए कभी,
क्योंकि जो ऋषि मुनि है तो वो बाल नहीं निकाल रहे हैं, जटाएं धारण कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो शुद्धिकरण की विधि है वो तो कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो ये इतनी शक्तिशाली विधि है कि इन छोटी छोटी बातों का कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना।
हमने हमारे भक्तों से अनुरोध करता हूँ कि जैसे हमारी एज तो हो गई है, मैं गुस्सा तो नहीं कर सकता हूँ, मगर मेरा एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि कम से महीने में एक बार बाल तो सेविंग जरूर।
ये प्रभुपाद का ये कहना है कि ये खराब लगता है, ये आप को जो है मतलब ये सफाई के विरुद्ध है। अगर आप बाल रखते हैं तो एक तो आपको फिर सफाई करने में बहुत टाइम आपको लगाना पड़ेगा, और साथ साथ ये जो है देखने में भी खराब लगता है और प्रचार की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है। या तो जो है आप बड़ी बड़ी जटाएं धारण करो और नहीं तो जो है मुंडित करो, लेकिन बीज का अच्छा नहीं है, आप समझ रहे हैं। हाँ, तो मुंडन करो, है ना। तो एक तो सफाई की दृष्टि से ये बहुत अच्छा है, मुंडन करें, अपना समय अपना काफ़ी बच जाता है इससे। लेकिन ऐसे कुछ नियम नहीं है कि भाई आपको मुंडन कर, समय स्थान परिस्थिति के अनुसार ये जो है नियम बदल सकते हैं, ठीक है ना। अब मृगचर्म धारण करते थे तो इसमें मतलब मुख्य कारण यही है कि अपना समय बचा रहे हैं, कि अब कपड़ा कोई सिले तो कितना समय लगेगा, क्या कपड़ा अपना खुद सिलने में। हाँ, भोजन भी वो जो है जंगल में जो मिलते हैं फल मूल वही खा लेते हैं, वो भोजन बनाने में भी अपना समय नहीं खराब करते हैं। तो मुख्य बात यही है कि अपना समय बचा, लेकिन समय बचा करके अगर ये चीज़ें हमको प्राप्त हो जाती हैं तो हम इनको त्यागें कि भाई ये प्रपंच है, तो फलगु वैराग्य प्रापंच की तया बुद्धिया हरि संबंधी बस होना। अब भगवान की कृपा से हमको सिले कपड़े भी मिल रहे हैं और सब सुविधा है हेड सेव कराने की, और हम इसको त्याग हैं कि नहीं नहीं ये तो प्रपंच है, तो फलगु वैराग्य। युक्त वैराग्य है कि हर चीज़ का प्रयोग आप इस तरह से करो कि कृष्ण की सेवा में आपको ज़्यादा समय मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रचार कर सकें और लोगों को प्रभावित कर सकें, ठीक है ना। तो ये वेशभूषा जो वैष्णवों की है ये प्रभावशाली है, लेकिन विदेशों में जो भक्त लोग हैं आवश्यकता पड़ने पर पैंट शर्ट में जाते हैं प्रचार करने के लिए, है ना। तो ये समय स्थान परिस्थिति के अनुसार है कि वे ये वेशभूषा पसंद नहीं करते हैं तो वे पैंट शर्ट में जाते हैं, तिलक भी छिपा करके जाते हैं, तिलक को छिपा लेते हैं, है ना। ठीक है, आपको कुछ कहना। धन्यवाद। हैं, हाँ मल, हाँ। तो इस तरह से दोनों बातें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। हे कृष्ण,
जय हो।